نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سورة آل عمران کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت پہ جس نے بھی آپ نے غور سے سنی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیت اپنی جگہ ایک آیت سے بڑھ کر پورے دین کا جو اصل مقام ہے ہماری زندگی میں, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کا خوبصورت امتزاج. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں, کیا ٹھیک ہے, دنیا رکھیں, دین رکھیں, کیا کریں. اور ایک اور بھی بہت ہی مس کنسیپشن ہے ہمارے دین میں بہت عرصے سے کہ جب دین میں آئیں گے تو ساری دنیا چھوڑنی پڑے گی, اور نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ پہن سکتے ہیں, اور گھر داری تو سارا دنیا داری ہے اور گناہ گاری ہے, اور بچوں میں پڑ جائیں تو یہ ہوگا. یعنی ہمارا ایک عجیب سا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم نے دین کو کسی ایک کونے میں ڈال دیا اور بس مسجد میں بیٹھ کے اگر تھوڑی دیر کوئی ایسا کام کر لیں جو اچھا لگے تو وہ دین ہے, اور ذرا کسی کو ہنستا بولتا کھاتا پیتا پہنتا اوڑھتا دیکھ لیں, کسی کو اپنی نعمتوں کو انجوائے کرتا دیکھے تو بدگمان ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ دینداری نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج جو ہم سیریز شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے شہوت. شہوت کیا ہوتی ہے, شہوت سے کیا مراد ہے, کیسے اسی آیت کی روشنی اور قرآن پاک کی باقی آیات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے. آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں خود یہ محبت ڈال دی. کس چیز کی؟ جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس اس سے اچھا ٹھکانہ ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں عورتیں, بیٹے, پھر سونا اور چاندی, پھر نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی گاڑیاں کہہ لیجیے آج کے دور میں, پھر اس طرح مویشی اور کھیتیاں, سات چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو دیکھا جائے تو کم و بیش وہ انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے. مثلا عورت ہے تو وہ مرد کی کمزوری ہے, بیٹا ہے تو وہ ماں کی کمزوری ہے, سونا چاندی پھر خواتین کی کمزوری ہے, اور اگر گھوڑے کو آج کی گاڑیاں رکھ لیجئے تو یہ عورتوں کی کمزوریاں ہیں. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زجنا للناس حب الشہوات, ہم نے لوگوں کے دلوں میں شہوات کی محبت ڈال دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے, غلط نہیں ہے, اللہ نے ڈالی ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے, غلط چیز تو اللہ نہیں ڈالتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کیوں ڈالی ہے, ایک ہمارا سوال ہے. اس پہ میں تفصیل پہ نہیں جاؤں گی, لیکن آپ کو ایک ریکمنڈیشن دوں گی کہ اگر آپ سفیر الجنہ کی تفسیر کے سیٹ میں سے, ویب سائٹ یا ایپ میں سے سن کر اس آیت کی تفسیر سن لیں. بہت ڈیٹیل سے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ آخر اللہ نے پھر اس دنیا کی محبت دل میں کیوں ڈالی, اگر یہ گناہ ہے, اگر یہ غلط ہے, اور اگر اس میں پڑھ کر انسان گناہ گار ہو جاتا ہے. تو وہاں میں نے 5-6 ڈفرینٹ لیول لکھائے تھے کہ آخر اللہ نے کیوں ڈالی, جس میں سے ایک تو بات صرف آپ کے فائدے کی یہ ہے کہ اگر اللہ یہ محبت نہ ڈالتا تو دنیا کا نظام کیسے چلتا. شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہ آتی تو بتائیے اتنی مختلف طبیعتوں کے باوجود ایک ساتھ رہتے, ناممکن بات تھی. اولاد کی محبت بھی عورت کے دل میں نہ ہوتی تو کیا راتوں کو جاگتی, اور ایک بچے کی پیدائش پہ جو درد سہتی ہے وہ کوئی عورت سہتی, یا ایک کے بعد دوبارہ کبھی ماں بننا چاہتی, نہیں بننا چاہتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ ساری چیزوں کی محبت ہے جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. صبح اٹھ کے باپ بھی محنت کرتا ہے, ماں بھی جاتی ہے, کام کرتے ہیں, گھر داری ہے, تو اس کے بغیر چلنا نہیں تھا. اور دوسری بھی اس کی ایک وجہ بتائی تھی اس میں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا, یہ کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا تعارف ہے. دنیا میں اللہ نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹریلر دیے ہیں, آج ہم اپنے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہیں لیکن ساتھ کتنے غم ہیں, کتنے دکھ ہیں. میرے لیے سب سے زیادہ غم ہے जिसका बच्चा नहीं उसको तो शायद ही एक गम हो वो भी, अगर अल्लाह डाल दे कि औलाद नहीं है, लेकिन जिनके बच्चे हैं उनके तो बहुत सारे गम हैं। तो अल्लाह ने ये आखरत का एक तारुफ रखा है कि असल हालत में ये चीज़ें तुम्हें वहाँ जाके खूबसूरत लगेंगी। आज जो मौजू है हमारे पास वो शहवत का मौजू है, और इस इंशाल्लाह सीरीज़ को हम 3-4 नशिस्तों में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हम बैलेंस नहीं देख पा रहे। जो दीन पे झुका तो उसने दुनिया छोड़ दी, और जो दीन पे आया तो उसने कहा जी दीन साथ नहीं चलता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पूरी सीरीज़ के सुनने के बाद आप लोग इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि हर चीज़ को कहाँ रोकना है कहाँ चलना है। जैसे आप देखिए कि गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी में स्पीड लिमिट 200 तक भी होती है क्या, लेकिन अब हर जगह 200 की स्पीड से चलते हैं। कभी आप सिर्फ 20 पे चलते हैं, रींग रही होती है गाड़ी, रश में फंसे हैं, और कभी माशाल्लाह आप 120 पे भी चलते हैं, वक्त का है। सेम चीज़ याद रखिए कि अल्लाह ने दुनिया में जो कुछ आपको मुझे दिया है ये हमें दिलाने के लिए, इसी को लेकर यही दुनिया की कश्ती में बैठकर आखरत के समंदर में हमने तैरना है। लेकिन बैलेंस जहाँ नहीं रख पाते, एक तरफ झुक जाते हैं तो उससे खराबी होती है। तो ये सीरीज जो पूरी सुनेगा आप में से, उसको क्या क्या पता चल जाएगा इस सारी चीज़ के बाद। पहली बात है कि शहवत क्या होती है, और हमारे यहाँ उर्दू में ये लफ्ज़ बहुत आम भी है ना। फिर दूसरी बात है कि शहवत क्यों पैदा की गई। तीसरा हम इसमें देखेंगे कि हराम शहवत में बंदा क्यों डूबता है, यानी जायज़ मोहब्बतों को नजायज़ पे क्यों, उसके असबाब क्या है। मतलब बीवी से मोहब्बत करनी थी लेकिन गैर औरत से करने लग गए, ये जायज़ नहीं है। हलाल कमाना था लेकिन हराम कमाने लग गए, ठीक है। फिर अगली चीज़ हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि फिर इसका इलाज क्या है, यानी हराम शहवत में अगर कोई पड़ चुका है तो फिर उसका इलाज क्या है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम ओवरऑल देखेंगे कि हमने इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कैसे लेके आना है। पहली बात ये याद रखिएगा कि अल्लाह सुबहान तआला ने इंसान में जो भी जज्बे पैदा किए हैं वो गुनाह नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो उसके बाद आप देखिए कि अम्मा हवा को पैदा किया गया, मर्द के दिल में औरत की मोहब्बत डाली गई, इसी से वो सारा मामला चल रहा था और अल्लाह ताला उस काम को चलवा रहा था। अगर अल्लाह ताला ने ये जज्बे डाले हैं तो इसका सही इस्तेमाल भी अल्लाह ताला ने सिखाया है। अगर अल्लाह ताला दिलों में ये मोहब्बतें ना डालता तो भी खराबी थी, लेकिन इस मोहब्बत का नाम लेकर, मतलब बीवी की मोहब्बत में नमाजें छोड़ दे, बीवी के पास हैं तो फजर नहीं पढ़नी, बीवी के साथ हैं तो अब बाजारों में उनको लेके फिर रहे हैं, तो हमें नमाज की इबादत की चीज़ों की नहीं है। तो ये सारा कुछ इंसान का इम्तिहान है। हम सबको ये दुआ आज ही पढ़ लेनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अग्निना बी हलालिकन हरामिक, कि अल्लाह मुझे अपने हलाल के साथ गनी कर दे हराम की बजाय, यानी मैं हराम में ना पढ़ूँ। व बी तौतिका मासियतिक, कि अल्लाह मैं तेरी इतात में मसरूफ़ रहूँ, तेरी नाफरमानियाँ ना करूँ। व बी फदली का मन सिवा, और तेरे फजल के साथ इनके सिवा जो कुछ चीज़ें मुझे उससे गनी कर दे। तो शहवत का लफ्ज़ अगर आप थोड़ा सा इसको गहराई में जाकर देखें तो अगर इसमें तीन लफ्ज़ हैं, शीन हावा, उर्दू में आप लफ्ज़ सुनते हैं इश्तहा शहवत, और इसी तरह से किसी चीज़ की तरफ रغبत होना, उर्दू में आप लफ्ज़ सुनते हैं शहवत प्रस्त इंसान। बहुत कोई बड़ा शौकीन मिजाज बंदा हो तो लोग कहते हैं जी इसके अंदर बड़ी शहवत है, ठीक है। तो ये शहवत क्या होती है, किसी चीज़ की ख्वाहिश, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, मोहब्बत करना और शौक़ रखना, यानी ये लफ्ज़ में एक रग़बत पाई जाती है। और ख़ास तौर पे जब बंदा किसी चीज़ से मोहब्बत करे और फिर उसको पाने की कोशिश भी करे, इसको शहवत कहते हैं। ये तो एक डिक्शनरी मीनिंग्स है, लेकिन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में इस्तलाही मानी क्या होते हैं कि ये इंसान की तबीयत में दाखिल है, वो इंसान की फितरत में है। अल्लाह ने बंदे को पैदा किया था बहुत बड़े मकसद के साथ, लेकिन इसके साथ साथ औरत और मर्द का, दोनों का आपस का जो ताल्लुक है, जो एक माशरे की बुनियाद बनता है, उसके अंदर शहवत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सेम बात याद रखिएगा कि बीवी से मोहब्बत ना हो तो मर्द कभी भी इतनी कुर्बानियाँ ना दे, और सेम थिंग यही है अगर शौहर से मोहब्बत ना हो तो औरत भी इतनी कुर्बानियाँ ना दे। फिर इसी तरह नफ्स का किसी चीज़ की तरफ शौक रखना इसको है। अच्छा, आप इसका दूसरा नाम लज्जत भी ले सकते हैं, लज्जत लेना। अच्छा, आज क्या जहन में आता है लज्जत नहीं लेनी चाहिए, लजीज खाना नहीं खाना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, नहीं, गलत तरीका है, फिर तो मुर्दगी है। इसी को तो नसारा के अंदर रहमानियत के नाम पे मासूम किया गया, खाना छोड़ दो पीना छोड़ दो। और आप लोगों ने कईयों को देखा हो ना देखा हो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब क्रिश्चियनिटी में इंतहा पसंदी बढ़ी थी तो उन्होंने अपने ऊपर ख्वाहिशात को हराम कर लिया, ये जो भी राहिब बनते हैं या नंस बनती हैं, उसका असल थीम क्या है? खुश नहीं रहना, मुस्कुराना नहीं। उनके कई प्रीस्ट हैं, अगर आप सूरत हदीद की आयत पढ़ें कि जिसमें रहमानियत की बात होती है, तो उसकी तफसीर में इतने वाक़यात मिल जाते हैं कि कैसे, मसलन इनका एक प्रीस्ट था तो वह शहद की मक्खियों के खग्गे के पास अपने आप को रखता था और सारा दिन अपने आप को डसवाता था। उसका तसव्वुर क्या होता है कि जितना तकलीफ़ आएगी, दुखी होंगे, गंदे मैले कुचैले रहेंगे, आपके दर्जे बुलंद होंगे। एक उनका प्रीस्ट है, वो कई साल तक नहाया ही नहीं, कोई इस तरह कचरे में बैठा रहता था, कोई गंदगी के ढेर के पास बैठता था। इतने वाक़यात हैं ऑथेंटिक रिवायात से जो चीज़ें हमारे तक पहुँचती हैं तारीखी वाक़यात से, कि उन्होंने अपने ऊपर हर लज्जत हराम कर दी। नहाने को ऐब समझते थे, जुर्म समझते हैं, जो जितना गंदा रहे उनके ख्याल में वो नेक होता था। तो इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने हमारे अंदर शहवात और लज्जतें पैदा की हैं। क्यों पैदा की हैं? नंबर एक, हम उससे अपनी मसलहतें पूरी करें। देखिए, अगर खाने से लज्जत ना मिले तो ये सारी सब्जियां, फल, फ्रूट, आम, कद्दू, चावल, ये कौन खाएगा? सोचने की बात है। अगर हम भी गाय भैंस की तरह बस पट्ठे खाते हैं, तो बताइए फिर अल्लाह ने आम क्यों पैदा किया? फिर अल्लाह ने मिठाई क्यों बनवाने का तरीका सिखाया? फिर बिरयानी कौन बनाता? देखिए, सिर्फ पेट भरना होता, वैसे तो औरतें फारिग हो जाती। आज औरतों को इस टेस्ट ने इस हद से बढ़ा दिया, ये भी आगे हम सीखेंगे कि एक हद तक टेस्ट कॉन्शियस होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रेसिपी शेयर करना और उसको लेना और उसके लिए घंटों किचन में खड़े होना और एक एक दावत में 10-10 खाने रखना, ये भी ज्यादती है। लेकिन अच्छा खाना आप खा सकते हैं। अल्लाह के नबी को सरीद का खाना बड़ा पसंद था, गोश्त के अंदर रोटियां डबो के खाते थे, जैसे हमारे यहाँ आजकल हरीसा या हलीम बनती है, आप शौक से खाते थे। आपको मीठी चीज़ अच्छी लगती थी, कोई बुरी बात नहीं है, इस पे कभी भी माइंड नहीं करना चाहिए या लोगों को लगे कि हाय ये दीनदार हैं फिर अच्छा खाना खाते हैं, हाय इनको खाना बनाना भी आता है। आज हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए इन चीज़ों पर, और मौलवी लफ्ज़ के साथ देख लीजिए, हमने हलवे का और मुर्गी का ताल्लुक ही जोड़ दिया, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा खाना खा सकते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे अंदर ये शहवत और लज्जत इसलिए रखी कि मसलहतें पूरी करें, इसलिए अल्लाह ने हमारे अंदर खाने पीने की लज्जत और शहवत पैदा कर दी। इब्ने तैमिया कहते हैं कि अपनी ज़ात से ये रहमत है। आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके टेस्ट बड्स नहीं होते, बुढ़ापे में अमूमन मिर्चें नहीं खाई जाती, खाते हैं ना बड़े तो कहते हैं हज़म नहीं होता। जैसे मैं ख़ुद कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ, सिर्फ दलिया खा लिया, उबली हुई चीज़ खा ली, अब उनकी ज़िंदगी कैसी है कि वो लज्जत नहीं ले पा रहे, सिर्फ उनको 2-3 नवाले चाहिए जिससे वो बाकी रहते हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने ये चीज़ हमारे जहन में इसलिए रखी कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जाएं, ताकत मिले, फिर जब खाएंगे तो कहते हैं उसके बाद फिर इंसान में जिंसी जज्बात पैदा होंगे, निकाह की ख्वाहिश पैदा होगी, उसमें भी अल्लाह ने लज़्ज़त रख दी। इस ताल्लुक़ के अंदर ये सब कुछ करके क्यों किया? ताकि इससे नस्ल कायम हो। अब शौहर बीवी के आपस हुए ताल्लुक़ के बीच में अगर अल्लाह ने ये लज़्ज़त ना रखी होती तो सच बताइए कि एक बच्चे का वजूद होता? अल्लाह ने एक नस्ल की बका के लिए सब कुछ रखा। तो वो कहते हैं कि अगर इन कुव्वतों से, इन चीज़ों से मदद ली जाए तो फिर हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सआदत है, यानी ये कोई बुरी बात नहीं। हत्ता कि आपको पता है कि इन ताल्लुकात को भी अल्लाह ने इबादत रखा, सवाब का काम है, कोई बुरी बात नहीं है। खाते हैं आप इस नियत से कि इसके बाद इबादत करेंगे, सरासर इबादत है। आपका खाना पकाना, समेटना, सुखाना, ये सब कुछ इसलिए कि हम इससे ताकत हासिल करें। आप सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? कि सुबह फजर पे उठना है, फ्रेश उठेंगे, नरम बिस्तर पे सो रहे हैं, गर्म लिहाफ ले रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। यानी शहवत लफ्ज़ सुनते ही एकदम दिल में बुरी चीज़ नहीं आनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें गंदी और ख़बीस चीज़ों के खाने से रोका है ना, मसलन जुल्म के साथ किसी का माल ले लेना, फजूल खर्ची करना, बीवी पे जुल्म करना, मुलाजिमों पे जुल्म करना, तो हम सरकशों में होते और जो नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते वैसे ही काम करते हैं। सारी बात का खुलासा क्या निकला? पहली बात है कि शहवत अपनी जगह से बुरी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल और इसकी क्वांटिटी बुरी है। अगर खैर में, मुबाह कामों में, हलाल कामों में किसी चीज़ की शहवत हो, कोई बुरी बात नहीं। आप मुनासिब हद तक अच्छा खाना खा सकते हैं, आप मुनासिब हद तक इंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप अपने घर को मुनासिब हद तक डेकोरेट भी कर सकते हैं। देखिए, इंसान का मिजाज है। आप ड्राइंग रूम अगर अपना सजाते हैं तो अगर आपने कालीन और सोफ़े एक ही रंग के ले लिए तो कोई जुल्म नहीं हो गया? इसका नहीं मतलब कि आप बिल्कुल फोहड़ हो जाएं, आप नीले रंग की कुर्सियां रख लें, पीले रंग के सोफे रख लें और रेड कलर के आप पर्दे लगा लें, फिर आप कहते हैं जी हम बड़े ही नेक हैं, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये जो मैचिंग करते हैं ये तो बड़े ही बेदीन लोग हैं, और ये तो बस इनका, ये गलत है कॉन्सेप्ट। मसला क्या है? उसमें हद से गुजर जाना, जिंदगी का मकसद ही हो जाए एक एक चीज की मैचिंग के पीछे भागते हुए नमाजें कजा कर ली जाए, या फिर ऐसे खूबसूरत सजेस्ट जाए ड्राइंग रूमों में किसी को पाँव ना रखने दिया जाए कि अब हमारी ये कीमती चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब हद के अंदर रहते हुए कोई बुरी बात नहीं है, और आप देखिए कि बैलेंस के साथ जब ताल्लुक़ होता है ना तो उसमें इबादत का भी वक्त मिल जाता है, औलाद को पैदा करना पालना पोसना इसका भी मिल जाता है, फिर आप देखिए जज्बे पैदा होते हैं, खुद आप देखें अपने ऊपर लें, मैले कुचैले कपड़ों में आप बैठे हैं, ख़राब कपड़ों में बैठे हैं, ऐसे लगेगा शायद बीमार है, सर में दर्द है, अच्छा नहीं मुझे तो लगता है बुखार भी है, लेकिन आप उठते हैं गुसल करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मिसिंग करती हूँ जिससे लोगों का मिजाज बिगड़ा रहता है ना, वो गुसल नहीं करते। मैं आप सबको कहती हूँ, आप में से जिसको अपना बीमार लगे, जिसको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा रहता है, नर्व्स पे बहुत है, हर दिन गर्म पानी के नीचे 5 मिनट खड़ा हो जाए। देखिए अल्लाह ने पानी के अंदर शिफा दी है, एक जंग थी जिसमें सहाबा के दिलों में एक दूसरे के लिए कंदूरते आ रही थी, शैतान ने वसवसे भी डाल दिए थे, उधर से बारिश हुई, नहाए, दिल साफ हो गए। आप आजमा के देखे किसी पे गुस्सा आ रहा है, घर में लड़ाई हो रही है, कोई झगड़े किनारे थे, जाके आप बाथरूम में गुसल लें, आप बाहर निकलेंगे ना आपका दिल धुल चुका होगा, मियाँ पे भी रहम होगा, बेचारा कहेगा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मूड क्यों इतना अच्छा हो गया, पता चला वो काम जो मियाँ पे बरस के करना था वो आपने गर्म पानी में खड़े होकर अपने आप को रिलैक्स किया। बहुएं भी खुश हो जाएंगी कि आज अम्मी जी खुश क्यों, क्योंकि आज अम्मी जी नहाई हैं, ये अम्मी जियों को तो रोज़ ही नहाना चाहिए जिनका मूड ही बड़ा ख़राब होता है। फिर इसी तरह से आप देखिए हम नाहक अपने बच्चों पर ज्यादती करते हैं, उठते बैठते उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके ऊपर बातें कसते रहते हैं, और फिर कहते हैं ये हमारी इज्जत नहीं करते, ये हमसे प्यार नहीं करते। जब किसी पे गुस्सा आए जाइए आप शावर ले लीजिए, अच्छे कपड़े पहन लें, किसी दिन आप दुखी हैं परेशान हैं दिल महसूस जाता है, आप अच्छा सा कोई चमकता हुआ कोई शोक कपड़ा कोई फैंसी सूट निकालें, खुद अपने लिए पहने, क्या लोग इसका काबिल हैं कि आप उनके लिए सिर्फ पहने, और लटक के बैठ जाएं जी शादी में जा रहे हैं और चुपते कपड़े पहन रहे हैं, और आते ही सबसे पहले घर वालों के नसीब में नहीं है देखना, रस्ते में चीज़ें उतार के फेंकनी शुरू कर देते हैं कि जी अब जूती हाथ में पकड़ के गाड़ी से उतरते हैं, पाँव को लग रही है, ये गलत तरीका है। अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने शौहर के लिए पहने, अपने बच्चों के लिए पहने, बच्चों को कहें बेटा मैंने आज तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े पहने, मामा क्या बात है आज आप क्यों अच्छे कपड़े, मैंने आपके लिए पहने, आप मेरे कपड़े देख लो, आप महसूस करेंगे ये लाइवलीनेस आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है। घर में बिल्कुल ही हमारा हाल बुरा, और बाहर जाते हैं वो दूसरी तरह का बुरा हो जाता है, दोनों एक्सट्रीम है। हकीकत में तरीके से सलीके से रहिए, आप देखिए कि जब आप दूसरे से कोई चीज़ तलब करते हैं तो अगला भी आपसे तलब करता है। गालिबन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि मैं जब अपनी बीवी के पास जाता हूँ यानी शाम को घर जाता हूँ तो मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं साफ़ सुथरा होता हूँ, मैं खुशबू लगाता हूँ, क्यों कि मुझे पता है कि मेरा दिल करता है कि मेरी बीवी मेरे लिए ऐसे रहे, तो क्या उसका नहीं करता होगा। आज कितने मर्द हैं जो बीवियों के लिए और बीवियां मर्दों के लिए पहने ओढ़े, इल्ला माशाल्लाह, हाँ शादी के शुरू में 2-4 महीने हैं उसमें आप खूब पहनते ओढ़ते हैं क्योंकि जोड़े इतने होते हैं, तो बाकी देख रहे हैं तो मियाँ भी देख लेगा बेचारा, लेकिन अपने लिए ज़िंदगी को आसूदा करने के लिए। देखिए ज़िंदगी जलने कुड़ने के लिए थोड़ी आई है, मैं और आप सारी ज़िंदगी टेंशन में चले जाएँ, स्ट्रेस में चले जाएं, गुस्सा करके चले जाएं, कल हम फौत हों लोग एक तो रोएं दूसरा शुक्र करें कि चलो अब घर का माहौल तो अच्छा होगा। सच बताएं कि हम मैं और आप चाहते हैं कि मेरे घर वाले मेरे जाने पे शुक्र करें, कहीं चले जाएं आप दूसरी जगह तो कहें शुक्र है गई अम्मा कहीं, चलो शुक्र अब 4 दिन घर में सुकून रहेगा। हमेशा अपनी ज़ात को दूसरों के लिए नरमी का खुशी का जरिया बनाएं, और याद रखिए ये लोगों की गवाही हमारे हक में जानी है या हमारे खिलाफ जानी है। अल्लाह के नबी का दौर था और एक औरत का जनाजा जब गुजरा तो कुछ लोगों ने उसकी बुराई कर दी, कहा कि बड़ी बखील थी, गुस्से वाली थी, हमसायों को बड़ा सताती थी, कुछ भी कह दिया होगा, तो आपने फरमाया कि वजबत वजबत वजबत, इस पे वाजिब हो गया। एक और मौके पे एक और जनाजा गुजरा तो लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की कि थी बेचारी गरीब ही लेकिन सदका बड़ा करती थी, अगर पनीर का टुकड़ा भी मिल जाता था ना आपने आपको तो सदके में दे देती थी, और लोगों के साथ मामलात में बड़ी अच्छी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये सारी बात पहुंची तो आपने फरमाया वजबत वजबत, कैसे वाजिब की, फरमाया कि पहली के ऊपर जहन्नुम और दूसरी पे जन्नत वाजिब हो गई। हमारे यहाँ क्यों कहते हैं कि आवाज़ खल्क नकारे खुदा, अल्लाह की तरफ से ये एक पहचान होती है, किसी के बारे में लोग जो कहना शुरू हो जाते हैं ना, आप देखिए हर बंदे की एक रेपुटेशन होती है, घर वालों में तो होती है, खानदान वालों में तो होती है, मुआशरे में, गली मोहल्ले में भी हो जाती है, तो अमूमन वो सच होती है। किसी को अगर सब कहते हैं ना ये बड़ा कंजूस है, बड़ा कंजूस है, तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। किसी को अगर कोई एक होशियार कह दे, कोई दूसरा होशियार कह दे, तीसरा भी कह दे, ज़रूर होगा। अल्लाह की नबी की हदीस से ये पता चलता है कि इंसान जैसा होता है ना, तो आसमान वालों में और अखीर फिर दुनिया वालों में उसका वही नाम मारूफ हो जाता है। तो अपने ऊपर लेकर सोचे, मेरे साथ वाले या जिनका मेरे से वास्ता पड़ता है वो क्या कहते हैं मुझे। देखिए बाहर वाले में सब अच्छा कहते हैं, बाहर तो माशाल्लाह हमारे ड्राइंग रूम मैनर्स इतने प्यारे होते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं कह सकते हैं कि आप बड़ी स्माइली हैं, आप कितनी पोलाइट आंटी, आप कितनी अच्छी हैं आंटी, आप तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आप मुझे बड़ी स्वीट लगती हैं। आप ज़रा कभी अपनी बहू से तो पूछिए, और कभी अपनी सास से तो पूछिए, और कभी अपनी बेटी से, और आप अपने कभी बहन भाइयों जो, और घर के सबसे बड़ी गवाही लेनी है आपने, मैंने अपने घर के मुलाजिमों से पूछे कि सुनाओ बहन मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, बेटा तुम बताओ कि मैं कैसी हूँ, क्या कल तुम क़यामत के दिन मेरी गवाही दोगे। असल वो गवाही होगी, शौहर से पूछे जाके। आज आज जाके, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको शायद कुछ काम दिया था, या आपको नहीं तो किसी और को दिया होगा, अपने शौहर से पूछिए क्या आपको अगर फिर मौका मिले तो मेरे से शादी करेंगे। अब तो फंस गए आप, एक दफ़ा शुरू में तो पता ही नहीं था, अब हो गई है, तो क्या अब दोबारा आप मेरे से शादी करेंगे। कई औरतों को मैं पूछती हूँ, कहती रहने तो हमसे पूछो पहले, हम उनसे करेंगी कि नहीं, तो हम सारी कदी नहीं कर दे। कई ऐसे हो कहते ऐसे फिर भी कर दे, पक्की बात है।
100% मर्द नहीं कर दे।
देखो मैं तो फिर गड़बड़ अपने अंदर है, फिर अपना ख्याल करें हम, बड़ी बात है। देखिए मार्केटिंग की जुबान का एक असूल है, कहते हैं कि आपके पास कितने भी कस्टमर आए, यानी आपकी आज दुकान में 100 कस्टमर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली दफ़ा 100 भी आ जाएं कोई बड़ी बात, आप ये बताएं कि आपके पास कौन सा कस्टमर दोबारा आया है। इसको कहते हैं रिपीटेड कस्टमर। क्यों? कहते हैं जो दोबारा आपके पास आया ना, इसका मतलब वो आपसे मुतमईन है, और जिसने दूसरों को भेजा है वर्ड बाय माउथ, जाओ तुम उधर मैं गई थी तुम भी जाना, अच्छी बात है। पहली दफ़ा तो धक्के खाते आते हैं, तो पहली दफ़ा तो हमारे मर्द फंस गए हैं। अब आज जाके पूछिएगा, मुझे अगले हफ्ते आपने जवाब देना है कि क्या आपके शौहर आपसे दोबारा शादी करने को तैयार है। दसते पे हो ते तुसी, ते तुसी उन्हें लिए शकीन मजाज हो जाओ, की कर ले उदे पैड़ी। फिर मैं माइंड ना करना, मेरी सारी हमदर्दी तुहाडे शौहर नाल है। वो पता नहीं किस, वो बेचारे पता नहीं किस ना सबर कर रहे हैं। देखे याद रखे, जब हम किसी से तंग होते हैं ना, अगला भी हमसे तंग होता है। हम किसी से खुश नहीं है ना, तो अगला भी हमसे खुश कोई नहीं होता। अगर हम किसी से दुखी हैं तो अंदर से वो भी दुखी होगा। यकीन करें ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आज हमने मरना है ना, तो सारी दुनिया ने, फिर किसी ने बहन कह के रोना है, तो किसी ने माँ कह के, और फिर लोग क्या कहते हैं, अल्लाह बख्शे मेरी सास को, वैसे गुस्से की बड़ी तेज़ थी, अल्लाह बख्शे मेरी सास को, वैसे पहले दिन ही उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया था। चले आप देखिए, अब यहाँ तक जो बात हुई, चले इसको तो आपने समझ लिया, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी नेमत दी है ना, अब ये शहवत एक नेमत है। देखिए ना, खाना खाते हैं तो टेस्ट आता है, मज़ा आता है ना, ये एक नेमत है। बिस्तर पर लेटते हैं नींद आ जाती है, तो नेमत है ना। यानी शहवत आप अपनी लफ्ज़ों में ये समझे कि जो नेमतें हैं ना उसको इन्जॉय करना। अच्छा कपड़ा पहन लिया तो खुश हो गए, किसी अच्छे घर में गए तो खुश हुए, ठीक है ना। तो जो भी नेमत है ना, फिर उसकी आजमाइश भी होती है। अब अगर आपके मेरे अंदर कोई भी मिलान है ना, तो याद रखिए उस पर आजमाइश ज़रूर आएगी। जैसे आप देखें हज़रत यूसुफ़ खूबसूरत थे ना, तो उनकी खूबसूरती ही उनके लिए फितना बन गई, क्योंकि उनके ऊपर औरतों ने नज़रें डालनी शुरू कर दी। तो जब शहवत एक नेमत है ना, तो ये आजमाइश भी है। अल्लाह सुबहाना ताला ने हर बंदे के अंदर ये ख्वाहिश रखी, और बाद में उसको कैसे आजमाया, इसके बारे में एक कॉल आता है। मालिक बिन दिनार थे, कहते हैं कि जो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में शहवतों पर गालिब आ जाए, यही वो शख्स है कि जिसके साए से शैतान भी घबराता है। यानी जिसने अपनी शहवत को दबा लिया, यही तो कहा गया कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन्निसा वल्बनीन वल्कनातीर अल्मुक़न्तरती। क्या पता चला कि अल्लाह ने दी तो है ये शहवत, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना। जैसे घोड़ा है ना, चला सकते हैं आप उसको, लेकिन घोड़ा अगर सरकश हो जाए तो आपको गिरा देगा। शहवत का घोड़ा अगर तेज़ हो जाए ना, तो आपको गिरा लेता है। आपको कंट्रोल होना चाहिए। जैसे एक सिस्टर थी तो वो कहने लगी मुझे शॉपिंग का क्रेव है, क्रेव कहते हैं नशा, मेरे हाथ में खुजली होती है, मैं बाजार जाती हूँ मैं पागलों की तरह शॉपिंग करती हूँ। तो मैंने कहा कि आप क्या करती हैं, कहती कई दफ़ा तो थैले भी नहीं खोले होते, वैसे ही फिर बैग्स के बैग पड़े रहते हैं, लेकिन चीज़ देख के मुझे बेचैनी होती है। अब आप देखिए कि क्या हुआ, शॉपिंग की आदत उन पर गालिब आ गई। अब वो नहीं भी लेना चाहती लेकिन वो ले लेती हैं, तो आप कह सकते हैं कैसा बंदा फिर शहवत का गुलाम हो जाता है, फिर वो चीज़ उससे अपने काम लेती है। और अगर बंदा शहवत पे काबू पाए तो शहवत का आका बन गया। आपने मैंने क्या करना है, कुछ लोग हैं उनको मसलन खाने का शौक है, हर वक्त लजत इधर उनके दिमाग में आया, मसलन पकौड़े खाऊं फौरन उठेंगी बनाना शुरू हो जाएंगी, अच्छा समोसे खाएं जब बाजार से लेकर आओ, अब आइसक्रीम खाते हैं अब चाट खाते हैं, यानी वो बंदा ना मजबूर हो जाता है। अब कुछ लोगों को पहनने उड़ने का शौक है तो हर वक्त उनका दिल दिमाग इन चीज़ों में लगाता है। तो आप इसको एक कुलिए में समझ लें कि जब आप अपनी शहवत पे अपनी ख्वाहिशों पे काबू पाते हैं ना तो आप उसके मालिक हैं, लेकिन जब वो आपको भगाता दौड़ाता है और आपसे मेहनत कराता है तो आप उसके गुलाम हैं। कभी औरतों को बाजार जाता देखें, पहले एक वक्त था कभी हम भी जाते थे, अब मैं सोचती हूँ और मैं जब भी किसी से बात करूँ मैं कहती हूँ किस तरह औरतें शॉपिंग कर लेती हैं, कैसे घंटों, यानी अब मेरे अंदर वो टेम्पर ही नहीं रहा कि मैं किसी के साथ 2-4 घंटे फिरूँ गली गली दुकान दकान फिर फिरा के ये ले लो वो ले लो, लेकिन चूंकि उनको मज़ा आ रहा होता है, एक तो पैसे ज़ाया, एक बेपर्दगी, फिर एक वक्त का ज़िया, सर में दर्द है, फिर नमाजें कज़ा हो रही हैं और कपड़े लेके आ रहे हैं, और शायद उसको वो इंजॉय भी नहीं कर पाते। तो बिल्कुल इसी तरह से एक इंसान को अपने ऊपर लेना, मसलन आप देखिए कि इसमें कुरान की एक मिसाल है कि जब नबी सल्लम को ग़ज़वा तबूक में जाना था और सहाबा को साथ जाने की बात हुई तो एक शख्स था जुद बिन कैस, सभी को दावत थी उसको भी थी, तो अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा अल्लाह के नबी आपको तो पता है कि मेरे दिल में औरतों की बड़ी मोहब्बत है, तो कबीला रूम क्योंकि रोमन्स के पास जा रहे थे तो उनकी औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो मुझे तो ना ही लेके जाएं तो अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी औरतों को देख कर मैं किसी फितने में बढ़ जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अला फिल फितना थी सुखित हो, ये पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ चुके हैं, यानी ये इनका अल्लाह के रास्ते से जिहाद से दूर रहना ये अपनी जगह पे खुद फितना है, वरना ये सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं। तो क्या पता चला, अब अगर यही जज्बा एक हद में हो तो एक शोहर अपनी बीवी के हकूक पूरे करता है, अगर ये जज्बा ना हो शादी निभ नहीं सकती, औलाद हो नहीं सकती, बात समझिए ना। तो हर चीज़ को अपने काबू में रखने की ज़रूरत है। आज के दौर में क्या औरत एक फितना है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हज़रत उसामा बिन ज़ैद की रिवायत है कि मेरे बाद मर्दों पर कोई फितना औरतों से ज़्यादा ज़र्र रसा नहीं होगा। हज़रत अबू सईद खिदरी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया से बचो और औरतों के फितने में पड़ने से भी बच जाओ, क्योंकि बनी इसराइल पर सबसे पहला फितना औरतों का था। अब आप देखिए इसको समझिए, आप भी औरत हैं मैं भी औरत हूँ, आज औरत को कैसे फितना बनाया, आप सिर्फ बड़े बड़े बाजारों के इर्द गिर्द जो बिल बोर्ड्स लग गए हैं सिर्फ उनके इश्तहार देख लें, आज ऐसे लगता है कोई चीज़ बिकती नहीं औरत के सिवा, ब्लेड भी औरत ही मर्द को पकड़ा रही है तो ब्लेड बिकना है, बिस्किट का डिब्बा भी औरत ही लचकाते हुए मुंह खोल के खा रही है तो पड़ता है। आप मुझे बताइए कि आज औरत को सस्ता नहीं कर दिया, आज आप और मैं, देखिए हम अच्छे घरों के लोग हैं, हमें इस चीज़ की समझ है हलाल हराम बुराई अच्छाई, हम कपड़े खरीदने जाते हैं पूरे पूरे प्लाजे के ऊपर एक औरत की तस्वीर लगी, एक जूते की दुकान है आप जूता बना ले सर पे जूते मारे लोगों के उसके साथ आधी टांग खुली दिखा रहे हैं, और हम क्यों लेते हैं उन दुकानों से फिर, क्या मेरे और आपके ईमान में इतनी भी गर्मी नहीं रही कि हम जाके आवाज़ खड़ी करें। अब तो लोग कहते हैं जोड़ा ले लिए वो तस्वीर नहीं ली, अब दर्जी सीए का कैसे, मुझे बताइए आज से 5 साल पहले कपड़े सिलते थे, मेरा ले 5-6 साल ही हुए इस फितने को आए हुए कि पहले मॉडल की तस्वीरें दिखाते हैं फिर वो देते हैं, और दर्जी भी कहता है भाजी इसकी तस्वीर नहीं आई, यानी उसको बेचारे को सीना ही नहीं आता, पहले आपको कोई 2-3 पीसों में जोड़ा दे देता था, बात हाय पीसों वाला जोड़ा दे दिया, आज 70 पीस उसके टाकियाँ छोटी छोटी जोड़ जाड़ कर देते हैं। देखिए मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि जो नाखूब था वो खूब हुआ, किसी ने मुझे कहा मैं उनकी बात कह देती हूँ मैं तो नहीं कहती ऐसे, कहती कल लोग दर्जन कहते थे आज डिज़ाइनर कहते हैं, दर्जन से कपड़े सिलाओ, हाय दर्जन से सिलाए आपने, हम तो दर्जी से सिलाते हैं, और आज लोग कहते हैं जी डिज़ाइनर के कपड़े, अब डिज़ाइनर में किस चीज़ का फ़र्क है, शहवत का फ़र्क है, लोगों की नज़रों को रिझाना, पतली दुबली लड़कियां खूबसूरत मॉडल बनाकर पेश करना, खरीदने वाली जोड़ा चाहे उसका जिस्म कैसा भी हो वो ये सोच लेती है कि पहन के मैं भी ऐसी लगूंगी, अब जब पहना वैसी नहीं लगी डिप्रेशन हुआ, कोई कहता है अच्छा ये वो जोड़ा तो नहीं लग रहा जो वहां था, अच्छा अच्छा पहनने वाला फ़र्क है, इज्जत हुई कि बेइज्जती हुई। और किसी ने एक पूरी आर्टिकल भेजा था कि एक फैशन मैगजीन, यानी जिसमें खूबसूरत बनी ठनी औरतें होती हैं, उसको अगर एक आम औरत जैसे हम जैसी खवातीन एक झलक देखती है उसकी, यानी मीन कह लीजिए कि 10 सेकंड लगते होंगे, उसके बाद शायद वो 3 से 4 घंटे डिप्रेशन में अंदर से रहती है। वजह क्या, वो अंदर से खुद को टैली कर रही होती है, मैं ऐसी क्यों नहीं, मैं ऐसी क्यों नहीं लगती, सचती नहीं, वो नहीं वो नहीं। अब मुझे बताइए कि जितनी ये चीज़ें आम हुई, आम लोग, देखिए ये तो आटे में नमक के बराबर है। कोई सारी दुनिया मॉडलिंग नहीं कर रही, सारी दुनिया शो बिजनेस की नहीं, और सारी औरतें इतनी हसीन होती भी नहीं है जैसी बन के दिखती हैं। अब पब्लिक, जो आम लोग थे, उनके दिल पर क्या गुजरी, क्या उनको इससे कोई फ़ायदा हुआ? नहीं फ़ायदा हुआ। तो जब किसी जज्बे को बढ़ा देते हैं ना, तो खराबी होती है। फिर इसका आप देखिए कि इस शहवत का एक कितना बड़ा नुकसान हुआ, जब मर्दों ने बाहर जो चमकती दमकती तस्वीरें देखी, चलिए ये तो तस्वीरें, जब एक औरत शहवत का इजहार बनकर बाहर मर्दों में निकली, वो शॉपिंग करने आ रही है, तो वो किसी जॉब में बैठी सेक्रेटरी है, वो किसी मतलब विंडो पे बैठी कोई हेल्पर है, कोई भी है, आप मुझे बताइए घर की सीधी सादी बीवी किसको अच्छी लगेगी, इल्ला ये कि जिसकी नज़रें झुकी हुई होंगी, जिसके दिल में इस चीज़ का यकीन होगा कि हकीकत में मैंने अल्लाह को जवाब देना है। हदीस में आता है कि जो मर्द अपनी निगाहों को फेर लेता है किसी औरत के हुस्न से, अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान से भर देता है। तो ज़रूरत किस बात की है कि कम अज़ कम औरत अपने मुकाम को पहचाने। आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा औरतों के एक्सपोजर और अपने आप को नुमाया करने से दुनिया में खराबियां आई हैं, इतनी किसी और चीज़ से नहीं आई। मर्द भी तो खुले फिरते हैं, उनमें वो कशिश नहीं है, मर्दों के अंदर वो कशिश नहीं। अल्लाह ने मर्दों को पर्दे का हुक्म ही नहीं दिया, उनको सिर्फ इतना कहा कि यग़ुद्दु मिन अब्सारिहिम, अपनी नज़रों को झुका लो। जब मर्द नज़र झुका लेता है, औरत को देखता नहीं है, और औरत जब अपने आप को छुपा लेती है, मर्द लाख नज़रें खोल खोल कर देखे, उसको नज़र नहीं आता। तो सबसे बड़ा फितना आज औरत का है। इसमें सिर्फ ये अपने लिए सोच ले, मेरा आपका कहाँ हिस्सा डल सकता है? क्या हम ये दो लफ्ज़ प्यार से, ठीक है आप किसी की बेइज्जती ना करें, बदतहजीबी ना करें, लेकिन दुकानदार को कह नहीं सकते कि हम लेने आए थे लेकिन हम इन तस्वीरों की वजह से नहीं ले रहे, और आप ये बिज़नेस ऐसे ना करें, आप इन लड़कियों की तस्वीरें हटा दें, हमें ऐसे भी ठीक है। और यकीन करें कि एक आवाज़ उठाएगा ना, तो दूसरे को हिम्मत होगी कि आप और मैं अपनी बेटियों बहुओं के लिए ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं।